ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गीवहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। कल विचार चल रहा था कि जीवन की दो धारा नित्य प्रवाहित होती रहती है, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। ये दो धारा जीवन की अनिवार्य है और इसी में ही जीवन पूर्ण होता है, परंतु शास्त्र ये कहता है कि ये दोनों धारा समाप्त होना चाहिए। क्या चलते ही रहना चाहिए? ऐसा नहीं, समाप्त होना चाहिए। मनुष्य शरीर जीवन धारा को समाप्त करने के लिए है, चलाने के लिए नहीं है। परंतु हमारे अज्ञानता के कारण हम इन चीजों को नहीं समझते हैं, इसलिए ये कहा जाता है। देखो, तुकाराम का एक वाक्य मुझे याद आया, शास्त्र या महापुरुष कर्म करने के लिए क्यों बताते हैं? मालूम है, जानते हैं, ये तो बाहर का साधन है। कर्म करने के लिए इसलिए बताया जाता है क्योंकि तुम्हें यदि कहा कि भाई तुम शांत बैठो तो तुम्हारे से नहीं बैठा जाएगा। क्या तुम्हें कितना भी आप समझाया बुझाया परंतु फिर भी आप शांत नहीं हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र ने ये युक्ति बताई कि इसको कर्म करके इतना थकाओ इतना थकाओ इतना थकाओ कि ये अपने आप ही बिना कहे ही शांत हो जाए। समझ रही ना, तुम्हें होना शांत ही है, लक्ष्य तुम्हारा शांति का ही है, तृप्ति का ही है, पूर्णता का ही है। परंतु वो कोई पूर्णता तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं करना है, वो तृप्ति कहीं तुम्हें प्राप्त नहीं करना है, तो वो शांति तुम्हें कहीं मिलाना नहीं है। कर्म के द्वारा शांति मिलती नहीं है, ना ज्ञान के द्वारा शांति मिलती है, ध्यान रखो। क्या ये जो तुम जिस ज्ञान को ज्ञान कहते हो, इस ज्ञान के द्वारा शांति नहीं मिलती है? नहीं तो फिर तो ज्ञान तो तुम्हें हो गया है, तुम शांत हो जाना चाहिए, परंतु नहीं मिलती है। वेदांत का मतलब ही होता है विद ज्ञाने, ज्ञान की ज्ञान का अंत। वेदांत का मतलब क्या होता है? ज्ञान का भी अंत। इसलिए शास्त्रकारों ने क्या, ज्ञानेश्वर जी ने भी अमृत अनुभव में ज्ञान का भी खंडन कर दिया है। क्या? सबका खंडन कर दिया है। इस ज्ञान के द्वारा तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, ना प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा मिलेगी, ना परोक्ष ज्ञान के द्वारा मिलेगी, ना अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा मिलेगी। साक्षात अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ ये ज्ञान नहीं होता है, ये तो स्वरूप है। स्वरूप का लक्षण शास्त्रों ने किया है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है तुम्हारी बुद्धि में जो होने वाला आत्मा का आभास प्रकाश, उस प्रकाश का नाम ज्ञान है। वो ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान भी क्या होना चाहिए, बोध भी समाप्त होना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी ने एक जगह कहा है, साधु बोध झाला तो नुरोनिया छेला, थाईच मुराला अनुभवे, कापुराच्या वाती उदळल्या ज्योती, थाईच समाप्ती झाली जैसी। इसमें स्पष्ट ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि कपूर सुगंधित, सुगंधित तो है ही, सुगंधित होना है क्या उसको? सुगंधित होना नहीं, वो सुगंधित ही है, उसका स्वरूप ही सुगंध है। परंतु कैसा है, मेरी बात समझ में आ रही है? सुगंधित तो है, परंतु कैसा सुगंध है? परिच्छिन्न सुगंध है। वो जब जितनी बड़ी है ना, बटी है ना कपूर की, उतना ही है वो, उससे अलग है क्या कहीं? नहीं है, सुगंधित ही, और बनना भी उसको सुगंधित ही है। क्या बनना है उसको? सुगंधित ही बनना है। तुम हो आत्मा ही, और बनना भी तुम्हें आत्मा ही है। तुम परम आनंद ही हो, परम सुख रूप ही हो, परम शांत हो, परम तृप्त हो, परम पूर्ण हो, और बनना भी तुम्हें यही है। इससे अलावा कुछ नहीं बनना है तुम्हें, समझ नहीं। परंतु जो तुम बनना चालू करते हो, बनना जो चाहते हो, ये बनना बंद करना है। क्या? बनना बंद करना है। हमारे गुरुजी एक दृष्टांत बताते थे, एक महात्मा थे और उनके पास एक शिष्य अध्ययन करता था, बड़ा श्रद्धालु था, तो श्रद्धालु था, सेवा भावी था। गुरुजी हमेशा कहते थे, बेटा देख, जीवन में कुछ भी तुम बनने का प्रयास मत करना, कुछ भी नहीं बनना।
क्या
तुम्हें यदि पूर्ण होना है तो वो कहते थे कि तुम्हें जीवन में कुछ भी नहीं बनना है। जिस दिन तुम्हारा कुछ बनना बंद हो जाएगा तुम शांत हो जाओगे। एक दिन दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे प्रवास में और चलते चलते बड़े दोनों भी थक गए थे। संयोग से जंगल था और उस जंगल में राजा का विश्राम का ये कोठी बनी हुई थी। पहले शिकार करने के लिए राजा लोग जाते थे तो वहां विश्राम करने के लिए एक जंगल में कोठी थी। संयोग से वो कोठी में पहुंच गए, वहां कोई नहीं था। दो कमरे थे, एक कमरे में गुरुजी सोए, एक कमरे में शिष्य जी सोए। कुछ समय के बाद जो वहां का जो रक्षक था वो रक्षक आ गया। देखा तो कमरे खुले कैसे हैं, जा करके देखा तो एक कमरे में गुरुजी सो रहे थे। गुरुजी को पूछा कि कौन हो तुम, तो गुरुजी कुछ बोले नहीं, दो चार चाटा मारा फिर भी गुरुजी कुछ बोले नहीं, तो समझा कि ये शायद गूंगा है लगता है, ये बोल नहीं सकता है इसलिए ये बोल नहीं रहा। तो गुरुजी ने छोड़ दिया गुरुजी को। दूसरे कमरे में गए तो चेला जी सो रहे थे तो जाकर उसको पूछा कौन है तुम, तो उसने फटने से बोल दिया मैं अमुक हूं। और मैं हमारे गुरुजी का मैं शिष्य हूं, साधु हूं, पहले तो बता दिया कि मैं साधु हूं। वो रक्षक कहता है साधु है फिर यहां राजा के कोठी में जरा क्या काम है, और पिटना चालू कर दिया, बहुत कुछ ये कहा। आखिर उसको क्या कर दिया, उसने अपराध तो हो गया था, राजा के कोठी में जाकर के कमरे में जाकर सोना अपराध तो था ही, बंद कर दिया उसको। गुरुजी को बुलाने का प्रयास किया, गुरुजी गए, कहा कि क्या बात हुआ, कहा कि भाई ये साधु है, कहा कि इसको जेल में डालो, ये साधु बन गया ना तो जेल में डालो। शिष्य के समझ में नहीं आ रही बात, कहा कि गुरुजी कहते जेल में डालो। शिष्य कह रहा है गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आपका चेला हूं, महात्मा हूं, साधु हूं, ब्रह्मचारी हूं, और आपको आप मेरे को कहते हैं कि जेल में डालो। कहा कि हां तुम बन गए ना कुछ, तो बनना ही तो जेल है। बात समझ में आ रही है, हम जीवन भर क्या करते हो, कुछ बनने का प्रयास करते हैं ना। देखो ध्यान रखो, कल बताया था कर्म किस लिए करना चाहिए। कर्म मार्ग ज्ञान के लिए है, भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। ज्ञान के साथ कर्म का योग होना चाहिए, और वास्तविक ज्ञान में कुछ भी नहीं है। क्या ज्ञान में ज्ञानपना भी नहीं है, ध्यान रखो, ज्ञान में ज्ञानपना भी नहीं है। ज्ञानपना तो हम उसके ऊपर आरोप करते हैं। परमात्मा ज्ञानी है, परमात्मा समर्थ है, क्योंकि हम असमर्थ है इसलिए परमात्मा को समर्थ मानते हैं, हम अज्ञानी है इसलिए परमात्मा को ज्ञानी समझते हैं। इसलिए तो श्रुतियों ने शास्त्रों ने अनिर्वचनीय कहा है, अनिर्वचनीय अर्थात इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा उसकी किसी भी प्रकार से कल्पना नहीं की जाती। हाँ तर्काचिया दृष्टि गोचर नोहेगा किरीटी, ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि इसके विषय में आप कोई तर्क भी नहीं कर सकते हैं, तर्क से भी परे, संकल्प से भी परे हैं। और वहां केवल जाने का रास्ता तो ज्ञान ही है, ज्ञान मार्ग है, समझ रहे ना, ज्ञान लक्ष्य नहीं है, ज्ञान सिद्धांत नहीं है, ज्ञान एक मार्ग है। शास्त्रों ने ज्ञान को मार्ग कहा है, कर्म भी एक मार्ग है, और इन दोनों की समाप्ति जहां होती है उसी का नाम तो परमात्मा है, उसी का नाम आत्मा है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, द्रव्य नहीं है। भले नहीं आई शास्त्रकार आत्मा को द्रव्य भी मानते, परंतु आत्मा द्रव्य नहीं है। वेदांत के सिद्धांत में आत्मा द्रव्य नहीं है, आत्मा तत्व है। तत्व का तत्व के रूप में तो वो भी श्रुति ने शिष्य को उपदेश करने के लिए उसको तत्व तत् कहा है। तत् सर्वनाम है, समझे ना, और तत्वम भी सर्वनाम है। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म वास्तविक करने के लिए शास्त्र या महापुरुष इसलिए बताते हैं क्योंकि तुम सीधा यदि कहे कि तुम शांत हो जाओ तो नहीं हो जाओगे, तुम कुछ बनना बन करो तो तुम नहीं करोगे, कितना भी तुम्हें कहा तो तुम नहीं मान सकते हो क्योंकि लाचार हो, प्रकृति के अधीन हो, करने के बिना तुम रह नहीं सकते हो, है ना। कल बताया था कि एक क्षण भी कुछ करने के बिना रह नहीं सकता आदमी, और करने का अर्थ है कुछ बनना चाहता है वो, यही तो गड़बड़ी है। क्या कुछ बनना चाहता है, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। कुछ बनना ही तो बंधन है। क्या बंधन क्या है? कुछ बनना ही बंधन है। चाहे आप भक्त बनो, ज्ञानी बनो, रागी बनो, विरागी बनो, साधु बनो, सन्यासी बनो, गृहस्थी बनो, कुछ भी बनो, बनना बंधन है। तुम्हें क्या लगता है कि सन्यास होने से क्या सुखी होता है और गृहस्थी होने से क्या दुखी होता है? ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी कल्पना, तुम्हें मालूम नहीं, इसलिए समझ लेना। जैसा कोई श्रीमंत आदमी को देख करके गरीब आदमी समझता है कि ये आदमी बड़ा सुखी है, क्या कहता है, ये आदमी बड़ा सुखी है। जैसे आपके गांव के लोग बंबई में रहने वाले को कहते हैं कि तो बड़ा पैसे वाला है, बंबई में रहता है, परंतु बंबई में रहने वाले को हालत मालूम है क्या है, है ना। गांव के तुम्हारे जो लोग हैं वो क्या समझते हैं तुम्हें, कि तो बंबई में रहता है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बंबई में रहता, बड़ा पैसे वाला आदमी है, समझ। परंतु बंबई में रहने वाले को मालूम है कि पैसे वाला है या क्या है, तो यही स्थितियां है। ऐसा ही तुम ये दूसरे को देख करके कल्पना करते हो, अपनी कल्पना से का अपने कल्पना का आरोप उसके ऊपर देख करके करते हो, नहीं, ये सब बंद करना है, समझ लें ना। ये जो श्लोक मैंने उठाया है इसमें बड़े गंभीर रहस्य है, समझ लें ना। ये समझ जाएंगे तो आपको अपने आप ही सब छूट जाएगा आपका, परंतु समझना पड़ेगा, समझ लें ना। सुनना नहीं, समझने की बात मैं कर रहा हूं। सुनते तो आ रहे हैं बहुत सालों से, परंतु समझे कम। महाराज जी कहते बुझे, कहा बुझे, क्या बुझे, कहा कि कुछ नहीं है, यही बुझे। बुझे का मतलब समझे, महाराज जी की जो भाषा है ना, अखंडानंद जी महाराज वो समझे को बुझे कहते, बुझे वो उधर की भाषा है। समझना है और कुछ करना नहीं है, ध्यान रखो। क्या मैंने कहा था कि तुम्हें मनुष्य बनने के लिए कुछ करना नहीं होता है, तो ऐसा ही तुम्हें ब्रह्म बनने के लिए भी कुछ करना नहीं होता है। और जो करना है वो छोड़ना है, परंतु समझ करके छोड़ोगे तो दुख नहीं होगा, सुख होगा। ना समझी से छोड़ोगे तो दुख होगा। इसलिए शास्त्र केवल आपको समझदारी देता है और कुछ नहीं देता है। शास्त्र तुम्हें केवल समझदारी दे रहा है कि तुम समझ जाओ। तस्मात् जागृहि जागृहि, श्रुतियां भी क्या करती है, जगाती, जगाती का मतलब समझाती है, समझे ना, क्या करती है, जगाती का मतलब आपको समझाती है। और हमें केवल समझना है, करना कुछ नहीं है, समझना। ये जो आप कर रहे हो, इसका जो अभिमान कर रहे हो, करो, शास्त्र यही कहता है, करने के लिए मना नहीं करता है, परंतु क्या नहीं तुम्हें करना है इसको समझाता है। तुम्हें देखना बंद नहीं करना है, सुनना बंद नहीं करना है, चलना बंद नहीं करना है, खाना पीना बंद नहीं करना है, लैट्रिन बाथरूम बंद नहीं करना, नहाना धोना बंद नहीं करना, कहीं जाना आना, मिलना जुलना ये बंद नहीं करना है। जो व्यवहार कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, वैसा ही करो, परंतु समझदारी पूर्वक करो, समझ करके करो। और समझना क्या है, ये कहां हो रहा है, किसमें हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या तुम्हें यदि पूछा कि तुम क्यों देख रहे हो, क्या उत्तर है तुम्हारे पास, हाँ क्यों देख रहे भाई, आंखों का काम देखना है, देख रहे, इतना ही तो को बोलोगे, इसके अलावा कुछ बोल सकते हो नहीं। कौन देख रहा है, तो फट दे से कहोगे मैं देख रहा हूं। अब तुम देख रहे हो कि आग देख रहे, प्रश्न करेगा कि तुम देख रहे हो कि आग देख रहे हो। जो देख रहा है वो बोल नहीं सकता, जो बोल रहा है वो देख नहीं सकता है, देख सकता है हा? नहीं, जो बोल रहा है वो देख नहीं सकता है, और जो देखता है वो बोलता नहीं है। बोलती कौन, वाणी, देखता कौन, आंख। आंख देखता है तो आंख बोलता है, वाणी बोलती है तो वाणी देखती है, तो उसका देखना कितना सही बोलती होगी, पहले बताइए, कितने सही बोलती होगी। ऐसा ही प्रत्येक कर्म को समझो और समझ करके करोगे ना तो बड़ा आनंद है, समझे ना, समझ करके करोगे, बोलने की जरूरत नहीं, केवल समझने की बात है। समझोगे तो आपको, आपका प्रत्येक कर्म आपको आनंद दे सकता है। अवघे चित्रलोक के आनंदाचे आता चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले। ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि ये संपूर्ण त्रैलोक के आनंदमय आनंदमय, परंतु चित्त चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले, अर्थात परमात्मा में हमारा चित्त हो, परमात्मा के ज्ञान में चित्त हो। ये समझ करके, यही भगवान ने भी गीता के अंदर कहा, कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्मकृत। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि
कर्मण्य कर्मय पश्येत। हे अर्जुन, कर्म में अकर्म को देखो। कर्म में अकर्म को देखो, या अकर्म क्या है इसको आपने कभी सोचा नहीं? अकर्म को कर्म, मैं कर्म नहीं करता हूं, ये देखना है क्या? जैसे आप लोग कहते हैं, महात्मा कहते हैं, अरे भाई ज्यादा घर का मोह नहीं करना। नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं, हमें कोई घर का मोह नहीं है, कोई पुत्र से मोह नहीं, कोई पत्नी से भी मोह नहीं करता है, परंतु होता है ऐसा नहीं, ये बात नहीं है। समझ, अकर्म स्वरूप जो आत्मा है उस आत्मा को देखो, कर्म में आत्मा को देखो और आत्मा में कर्म को देखो। क्या देखो का मतलब समझो। क्या देखो का मतलब क्या होता है? आंखों से नहीं, ज्ञान से देखो, बुद्धि से देखो, विवेक से देखो। देखने के लिए विवेक दृष्टि होना चाहिए। शास्त्र विवेक दृष्टि देता है, ज्ञान दृष्टि देता है। कर्म में अकर्म को देखने का अर्थ है कर्म में आत्मा को जानो। प्रत्येक कर्म में आत्मा है, प्रत्येक कर्म में परमात्मा है, परंतु तुम्हें समझना पड़ेगा कैसा है। तो क्या आपको अन्वय व्यतिरेक का ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तो आप तब समझोगे। सत्संग आपका विवेक को जगाता है, बुद्धि के अंदर विवेक निर्माण करता है, इसलिए सत्संग की महिमा है। कर्म में अकर्म को देखने का अर्थ है अकर्म स्वरूप जो आत्मा है वो तुम्हारे अंदर है, उसको समझना है तुम्हें। कर्म कहाँ है और किसमें है ये समझोगे तभी तो आप इस प्रकार से देख सकते हो। कर्म में अकर्म को तब ही देख सकता है कि कर्म क्या है और कर्म कहाँ है, कर्म किससे होता है, उसको समझना है। कर्म तो हम करते आ रहे हैं परंतु कर्म क्या है ये मालूम नहीं है, कर्म कहाँ होता है ये मालूम नहीं है, कर्म किससे होता है ये भी मालूम नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा कर्म अज्ञानमय है ना? तो अज्ञानमय कर्म तुम्हें सुख दे कैसा सकता है? प्रश्न ये होगा। क्या अज्ञानमय कर्म से कभी जीव को सुख नहीं मिल सकता है, तुम कभी सुखी हो नहीं सकते हो। ज्ञानी का सदा संसार उत्तम होता है। राजा जनक का उदाहरण भगवान देते हैं, और किसको देते हैं? जो महान भक्त है, महान तपस्वी है, महान विवेकी है, विद्वान है, महान पराक्रमी, ऐसे अर्जुन को बताते हैं। जनकादय गीता में उदाहरण दिया कि नहीं है? जनक का दृष्टांत दिया है। जनक के अंदर महानता थी क्या कुछ? जनक कोई पराक्रमी नहीं था, बड़ा योद्धा नहीं था, बड़ा धनुर्धर नहीं था, बड़ा तपस्वी भी नहीं था, बड़ा भक्त भी नहीं था। तो जनक के अंदर क्या विशेषता थी? जनक का उदाहरण अर्जुन को दे रहे हैं कि जो अर्जुन इतना महान है, दिव्य 12,000 वर्ष तपश्चर्या की है, परमात्मा का ऐसा भक्त है कि अर्जुन के बाल भी कृष्ण कृष्ण बोलते थे और वो भी निद्रा में बोलते थे, जागृति भी नहीं, निद्रा में बोलते थे। अब सोच लो, और इतना महापराक्रमी कि अर्जुन का नाम सुनते ही शत्रु थर थर कांपने लगते थे, महान धनुर्धारी। और उसको राजा जनक का उदाहरण देते हैं कि राजा जनक जनकादय कर्म के द्वारा ही उन्होंने सर्वसिद्धि प्राप्त कर दिए है ना, जंगल में जाकर के नहीं, घर में रह करके, राज्य में रह कर रहे और राज्य अपना संभालते हुए, भोग में रहते हुए। राजा तो भोगी होगा कि नहीं, भोग होगा कि नहीं, उसके पास ऐश्वर्य था कि नहीं था, सब कुछ था, परंतु क्या नहीं था, क्या नहीं था, नहीं समझ में आ रहा। उसके पास मैं नहीं था, अपने को मिटा दिया था, बस इतना ही रहस्य और कुछ नहीं है। क्या उसके पास केवल मैं ही नहीं था, अहम ही नहीं था, अहम ही उसने खत्म कर दिया था, समझी ना। कीर्ति किनकी होती है, जिसके अंदर कोई न कोई विशेषता है, समझ। अर्जुन के अंदर पराक्रम की विशेषता है, भक्तपन की, तपस्वीपन की विशेषता है, इसलिए अर्जुन की कीर्ति हो गई है। परंतु जो जनक के पास थी वो अर्जुन के पास नहीं थी। क्या? जो जनक के पास थी वो अर्जुन के पास नहीं थी, क्योंकि अर्जुन का अभी भी अहम बाकी था, समझे ना। ये श्लोक इसलिए मैंने उठाया कि इसको समझेंगे तो तुम्हारा अहम शांत हो जाएगा। भगवान ने ऐसा ही नहीं बताया अर्जुन को, ये कर्म के पांच हेतु क्यों बताए हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए मैंने ये तुम्हें सब उपदेश दिया, परंतु अर्जुन का अहम गया नहीं था। क्या? अर्जुन का अहम गया नहीं था, ज्ञान अर्जुन को नहीं हुआ ये बात नहीं है, ज्ञान हुआ, परंतु मोह नष्ट नहीं हुआ था। और मोह नष्ट नहीं हुआ था तो क्यों नहीं हुआ था, प्रश्न होता है कि नहीं है। मोह नष्ट कब होता है? मोह नष्ट कब होता है? अहम मिटता है तब होता है, ये ध्यान रखो। बिना अहम मिटाए मोह नष्ट नहीं होता है। अहम है, मैं हूं, तो मेरा रहेगा ही रहेगा, समझ लीजिए। केवल नहीं कहने से नहीं होता है। अर्जुन के अंदर मैं था, इसलिए भगवान समझे थे कि इसका मेरापन भी अभी तक गया नहीं है। क्या? जब तक मैं रहेगा तब तक मेरापन रहेगा। और इसी कारण से भगवान ने अर्जुन को ये श्लोक बताया, क्योंकि तुम जो इसके साथ मैं लगाते हो ना, अरे ये तो तुम ये है नहीं, तुम्हारे में नहीं, तुम्हारे से भी नहीं है, ना देखना तुम हो, ना तुमसे देखा जा रहा है, और ना तुम्हारे या तुम्हारे में देखने का कर्म हो रहा है। क्या? तुम देख नहीं रहे हो, तुम्हारे में देखनापन है ही नहीं, और तुम्हारे से भी नहीं है, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक मैंपना शांत कहां से होगा। इसलिए ये कर्म के पांच कारण बताए हैं, समझे ना, कर्म के पांच कारण बताए हैं। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, हे अर्जुन, कर्म के पांच कारण हैं। कारण का मतलब हेतु, हेतु जिसको मिलकर के ये बनते हैं। जैसा भोजन, तो तुम भोजन बनाते हो कि नहीं, खाते हो कि नहीं, भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? भोजन जो है उसको सबसे पहले तो अन्न चाहिए, चाहिए कि नहीं है, फिर उसके बाद क्या चाहिए? पानी चाहिए, और फिर तीसरा क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। इसके बिना होगा क्या? भोजन बना सकते हैं? नहीं। तो ये भोजन के ये हेतु है, अग्नि, पानी और अन्न, ये जैसे हेतु है इसी प्रकार से तुम्हारा कारण कर्म जो है वो कर्म किससे बनता है? ये तुम्हारे से बनता है कि और किसी से बनता है? कभी हमने सोचा नहीं है। हम देख रहे हैं या देखना और किसी से बन रहा है? हम सुन रहे हैं कि सुनना हमारा किसी से बन रहा है? हम चल रहे हैं या हमारा चलना किसी से बन रहा है? हम जग रहे हैं, हम उठ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, आदि जो भी प्रत्येक कर्म, समझे ना, वो शुभ अशुभ की बात नहीं है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो शुभ अशुभ की कल्पना तो बहुत बाहर की है, समझ लेना। परंतु जो कर्म हो रहा है ये किसमें हो रहा है, किससे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको समझना जरूरी है, तब ही तुम्हारा मैं शांत होगा, समझ लेना। शास्त्र ने सीधा कर दिया कि ना ये तुम्हारे में है, ना तुमसे है, ना तुम्हारा है, परंतु आप फिर भी मान सकते हो परंतु जान नहीं सकते हो, इसलिए जनाना है, केवल मानना नहीं है, समझ लेना। तृप्ति मानने से नहीं मिलती है, तृप्ति जानने से मिलती है, तृप्ति समझने से मिलती है। मैं ऐसा तो तुम कह सकते हो, नहीं नहीं महाराज, मेरे में कोई मैं नहीं हूं, ये भी कहते हो, मेरे में कोई मैं नहीं हूं, और बोल कौन रहा है फिर? ऐसा ये पाखंड है, दंभ, इसी को कहते हैं दंभ। दंभ किसको कहते हैं? जो हो अपन तो नहीं कहे, नहीं दिखाए, उसी को दंभ कहा जाता है। ये दंभ है, दाम्भिकता है, दंभो दर्पो विमानश्च, ये आसुरी संपदा है, प्राकृत संपदा, प्रकृति की, अज्ञान की संपदा है। ये अज्ञान से ही आप ये कह रहे हैं, इसलिए मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। भगवान भी वही बात अर्जुन के अंदर भी, अर्जुन भी कहता था कि नहीं, मेरे में तो कोई मैं नहीं हूं, क्या मैं आपका शिष्य हूं, ये तो अर्जुन कह रहा है कि नहीं कह रहा है? हा? मैं आपका शिष्य हूं ये तो कह रहा है ना, तो क्या मैं छूट गया क्या? शिष्य तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं है तभी तो कुछ बन रहा है, बनना बिगड़ना किसका है? मैं का। हम ना बनने के लिए कहते हैं ना बिगड़ने के लिए कहते हैं, भगवान यही तो युक्ति निकालते हैं बीच में से। भगवान ना अर्जुन को कुछ बनने के लिए कहते हैं ना कुछ बिगड़ने के लिए कहते हैं, बस शांत हो जाओ, कुछ भी बनो नहीं, समझ लेना। इसलिए भगवान ने ये पांच कारण बता दिए हैं। सांख्ये प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि, अर्थात सांख्य का मतलब वेदांत शास्त्र में, कृतान्ते अर्थात करने का अंत, कृत कृत का मतलब जो किया है या जो कर रहे हैं या जो करेंगे, क्या उसका अंत, अंत का मतलब अंत समाप्ति पूर्णता, या कृतांते सांख्ये प्रोक्तानि, इसकी समाप्ति इसकी पूर्णता कहां होती है, वेदांत में, किसमें, वेदांत में। वेदांत का अर्थ आप क्या समझते हो, कोई पुस्तक उपनिषद पुस्तक का नाम वेदांत है या किसका नाम वेदांत है? वेदांत का अर्थ होता है कि तुम्हारा जाननापने का समाप्ति, क्या वेदांत का मतलब क्या होता है, वेदांत का मतलब होता है तुम्हारे जाननेपन की समाप्ति, मैं जानता हूं मैं समझता हूं जो कहते हो, ये जाननेपन की समाप्ति ही सब हो जाएगी तो तुम्हारा मैं कहां बचेगा, क्या मैं को जानते हो इसलिए कहते हो मैं हूं ऐसा आप समझते हो। देखो शास्त्र ने इसको विकार का विकृति का विकृति, कुछ होनापन ही विकृति है, बिगड़ने के तो पहले हो तब तो बिगड़ोगे या बनोगे, है ना, परंतु सबसे पहले तो होनापन ही क्या है, विकृति, इसलिए अस्थि विकार बता दिया शास्त्रों ने। अस्थि का मतलब ही होता होनापन, आप अपने को मान रहे हैं कि मैं हो गया हूं, है ना, इसका अर्थ क्या है, आप अपनी उत्पत्ति मान रहे हैं कि मैं अभी उत्पन्न हुआ जन्म हुआ हूं, है ना, ये जानकर के कह रहे हो कि अनजान में कह रहे हो, मेरा जन्म हुआ है इतने साल हो गया है, ये जानकर के कहते हो कि अनजान में कहते हो, जानकर के कहते, तो ये जानना तुम्हारा विकृत हुआ है कि सही हुआ है, शुद्ध है, यही तो विकृति है, होनापन ही विकृति है। और वेदांत का अर्थ होता है ये जो तुम्हारा जाननापन है कि मैं हूं ऐसा आप बिना जाने बिना अनुभव करे आप कह सकते हो नहीं। भगवान अर्जुन की दृष्टि उधर ले जा रहे हैं, ध्यान रखो, समझे ना, ये कारण क्यों बता रहे हैं आप, उसकी दृष्टि स्वाभाविक कहां ले जाना है, अपने स्वरूप में ले जाना है, क्योंकि तुम्हारे होनापन भी तो कर्म ही आया का नहीं है, अस्थि भी एक कर्म है, होनापन भी एक कर्म है, फिर बनना या बिगड़ना वो दूसरा कर्म है, वो संस्कारों का क्रिया का है, परंतु पहला कर्म ही होनापन भवती उत्पत्ति, अर्थात जन्म जो है ये जन्म कर्म ही है कि नहीं है, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान ने क्या कहा है, कभी ध्यान में आया, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है, जन्म दिव्य हो जाता है तो कर्म भी दिव्य बन जाता है। दिव्य का मतलब क्या, भगवान के अंदर होनापन नहीं था, भगवान हुए नहीं है, कृष्ण हुए नहीं है, समझे ना, भगवान की उत्पत्ति जन्म हुआ है क्या, नहीं, केवल अभिव्यक्ति हुई है, अभिव्यक्ति, समझना। अब अभिव्यक्ति का अर्थ जन्म नहीं है। जैसे तुम शब्द को अभिव्यक्त करते हो शब्द के द्वारा किसी वस्तु को, तो क्या वो हो जन्म है? क्या वो जन्म नहीं है? दिव्य का अर्थ होता है, भगवान ये अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरा जन्म ज्ञानमय है, ज्ञानमय है। दिव्य क्या है? ज्ञान। भगवान इसलिए तो अच्युत कहा गया, अच्युत। अच्युत क्यों नाम दिया है? क्योंकि भगवान कृष्ण अपने ज्ञान स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं हुए हैं, समझे ना? उस ज्ञानमय है जन्म, तो ज्ञानमय जन्म हो जाए तो कर्म भी क्या हो जाएगा? ज्ञानमय हो जाएगा। परंतु हमारा जन्म, हमारा मैं, भगवान के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, ना समझ लोग कि भगवान ने तो आम आम कहा, तो भगवान कृष्ण तो बड़े अहंकारी थे। क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण बड़े अहंकारी थे, कहा कि कहीं जहां 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 तहां भगवान ने कहा कि मेरी शरणागति कर, अहम तो सर्वपापेभ्यो, है ना? अहम अहम का प्रयोग गीता में कई जगह भगवान ने किया। तो वो समझते कि जैसा अपना अहम है ऐसा ही भगवान भी अहम कह रहे हैं, ऐसा नहीं। जीव का अहम अज्ञानमय, भगवान का अहम ज्ञानमय। क्या दोनों अहम में अंतर है, ध्यान रखो। इसलिए भगवान का जन्म भी ज्ञानमय और भगवान का कर्म भी ज्ञानमय। भगवान करते थे सब कुछ, परंतु भोगी बने कि योगी बने? भगवान के जैसा देखने के लिए, संसार के दृष्टि से लिया दृष्टि से भगवान के जैसा कोई भोगी हो सकता है? कितनी पत्नियां थी? 16108, है ना? गोपियां तो अलग है, परंतु गोपियों को छोड़कर के 16108 पत्नियां जिसकी है, और सभी रानियों के 10-10 बच्चे थे। कितने? गिनती कर लेना तुम। और फिर उनके सबकी क्या पत्नियां भी थी, और उनके भी सभी को 10-10 लड़के थे, कहते हैं। कितने हो गए? तुम्हारा है इतना बड़ा परिवार? परंतु फिर भी भगवान कृष्ण कभी गृहस्थी बने? भगवान कृष्ण कभी सन्यासी बने? कुछ भी नहीं बने। इसका कारण क्या है? संजय ने भगवान को योगी कहा, योगेश्वर कहा, योगेश्वर, योगी ने योगेश्वर, समझे ना? क्यों कहा? इसका कुछ कारण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भगवान का, भगवान के अंदर मैं था ही नहीं, समझे ना? इसलिए कुछ बनी नहीं, हो गया सब। होने का और न होने का कोई मतलब नहीं, होता है तब भी ठीक, नहीं होता है तब भी ठीक, कोई अंतर नहीं है, समझ लें। आकाश में धुआं उठता क्या, बारिश होती क्या, धूल धक्कड़ उड़ती क्या, आकाश का कुछ अंतर पड़ेगा? आकाश मलिन होगा या आकाश गीला होगा? कुछ नहीं होता है। इसीलिए अर्जुन को भी भगवान यही चाहते थे, क्योंकि अर्जुन के सामने भगवान भगवान नहीं थे, सखा भी नहीं थे, गुरु के रूप में थे। इसलिए गुरु का कर्तव्य है, क्या गुरु का कर्तव्य है कि उसको कुछ बनने नहीं देना है, क्योंकि बनेगा तो बिगड़ेगा भी, जो बनता है वही तो बिगड़ता है, इसलिए कुछ बनने नहीं देना है। और ये बनने नहीं देने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, जो बनना रूप जो कर्म है उस कर्म के कारण को समझना पड़ेगा। क्या कर्म के जो हो, जिस कर्म से बना जाता है, तुम कुछ भी बनते हो तो बिना कर्म का बनते हो क्या? हा? तुम मनुष्य बने हो तो बिना कर्म के बने? तुम जीव बने हो तो बिना कर्म के बने? तुम कर्ता बने हो तो बिना कर्म के बने? जो भी बनना होता है बिना कर्म का नहीं होता है। साधु बनो, सन्यासी बनो, योगी बनो, भोगी बनो, देव बनो, जो भी कुछ बनो, बिना करे नहीं बनता है। मतलब कर्म से ही बना जाता है ना? वो उस कर्म को, जो कर्म तुम्हें कुछ बनाता है उस कर्म को समझना आवश्यक है। वो समझेंगे तो क्या बनना बंद हो जाएगा, बनना बंद हो जाएगा। मैंने कल बताया था ना कि कर्म किसके लिए है? कर्म ज्ञान के लिए है। कौन से ज्ञान के लिए? ये हम जिसको ज्ञान मानते हैं उस ज्ञान के लिए नहीं है, समझे ना? बनना बंद हो जाए, ये बनना बंद कैसा होगा? जिससे बनना बन गया है उसको समझेंगे तो हमारा जो मैं बना है या कर्ता भोक्ता बना है या जीव बना है, मनुष्य बना है, आदि आदि जो भी कुछ बनना है, इस बनने के कारण क्या है इसको समझना आवश्यक है। और उसके कारण पांच भगवान ने, मतलब सभी कारण तो बहुत हैं, परंतु सभी कारणों का इस पांच के अंदर क्या कर दिया, अंतर्भाव कर दिया है। सभी इसी के अंदर आ जाते हैं। ये पांच कारण जो है, इस पांच कारणों से कर्म बनता है और उस कर्म से, उस कर्म को तुम अपने में आरोपित करते, अपने उसका अभिमान करते होते हो, तुम्हारे से नहीं रही है परंतु तुम समझते हैं, तुम्हें भ्रांति होती है। और भ्रांति होती है तो जैसा कभी कभी आप लोकल में बैठते हैं ना, आपकी लोकल खड़ी है पर बाजू की लोकल जो है चलती है तो तुम्हें लगता है कि अपनी गाड़ी चल रही है, चल नहीं रही है, खड़ी है, गाड़ी जाता बाजू की रही है, परंतु आपके अंदर आपका दृष्टि भ्रम हो जाता है, बुद्धि भ्रम हो जाता है कि अपनी गाड़ी चल रही है। ऐसा ही ये भी होता है। इसके लिए भगवान यहां समझा रहे हैं कि सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम, सर्वकर्मणाम सिद्धये, एक शब्द दिया, सर्वकर्म की सिद्धि, सर्वकर्म की पूर्णता, सभी कर्म की तृप्ति, सभी कर्म की शांति जिससे तुम्हारी होगी। वो पांच कारण भगवान श्लोक में बता रहे हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं, ये पांच कारण हैं। अब आज समाप्त हुआ टाइम, तो कल इनके ऊपर, कल और परसों दो दिन का टाइम है, तो दो दिन इसी श्लोक पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।